يا علي مدد الوعظ راي ابو علي مشنري وعظ نمبر 744
جنوري 1990 وعظ المنزل جماعت خانة اوف تورونتو
يا علي مدد اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة هجي سميت ماري واري ما غور برما سي چنها شاپیر مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو دین دارو بہت سے بھائی بہن جب یہ گنان کا پاٹھ بولتے ہیں تو اس کے اندر سینچا نہیں ہے سینچے روپیہ مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے مومنوں اس کا ترجمہ بہت مشکل نہیں اے مولا یہ جو جماعت ہے بلکہ مخلوقات ہے یہ تیری واڑی ہے یہ تیرا باغیچہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس کا مالی ہے گنان کتھا گیا آج سے 900 برس پہلے اس کے لیے پیر نے ہندوستان کی بھاشا وہ لینگویج یوز کی کہ جو ادھر کے نیٹیوز بولتے تھے اگر ہم برہما یا ایشور یا ایسا کوئی نام لے لیتے ہیں یا ہریش چند کہہ دیتے ہیں تو یہ تو لوگوں کے نام ہے مذہب کو اس کے ساتھ کوئی سبند نہیں اور اس میں کوئی ہندوازم نہیں ہے جو ہم بہت دفعہ اپنی غلطی سے یا پریجوڈائز سے ہم یہ چیزیں لے لیتے ہیں میں جماعتوں میں کہتا ہوں ہریش چندر نہ بولو ایسا کہہ دو بدر علی مطلب تو ہم کو اس میں سے کچھ لیسن لینے کا ہے اے مولا او لارڈ دی جماعت اور مین کائنڈ ان ادر ورڈز از یور گارڈن محمد از دی گارڈنر دی کیئر ٹیکر اینڈ آل دی پارٹس آف دی ورلڈ نو اکھنڈ آل پاپولیشن ان 9 continents are getting benefit from Muhammad. 9 continents کی بات جو کی نوے کھنڈے میں یعنی دنیا کا کوئی بھاگ باقی نہیں رہتا. آج ہی مجھے کسی نے سوال کیا کہ 9 کھنڈ کون سے ہیں. میں نے کہا پیروں کی جیوگرافی رانگ نہیں تھی. حالانکہ اس زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ دیر از آرکٹک اینڈ انٹارکٹک ٹو اندر کانٹیننٹس. آرکٹک نارتھ پول کے پاس ہے انٹارکٹک ساؤتھ پول کے پاس ہے اینڈ دے آر نون ایز ٹو کانٹیننٹس. دو یہ ہوئے دو امریکاز ہوئے 4 ایک آسٹریلیا 5 ایک افریقہ 6 ایک یورپ 7 ایشیا 8 اور ایک وہ کانٹیننٹ ہے جو ہمالیہ سے نیچے ہے کہ جس کو سب کانٹیننٹ کہا گیا ہندوستان اور ہندوستان کے نیچے وہ سارے 32,000 islands دیٹ میک انڈونیشیا ریپبلک آف انڈونیشیا. یہ انڈونیشیا کی جو ریاست ہے اس میں 32,000 islands ہیں جو سب مرج ہو گئے پیسیفک کے اندر. ایک زمانہ تھا کہ یہاں کانٹیننٹ تھا جیسا ایک زمانہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کے اندر اٹلانٹس کانٹیننٹ تھا. خدا کی خدائی کے اندر فیر فار ہوتے رہتے ہیں नौ सौ बरस पीरसदर दीन ने या पीर असम कबीर दीन ने, जो कि इनको तो 500-600 बरस हुए, लेकिन फिर शमस को 900 साल हो गए, लगभग 1000 साल फिर सदगुरु नूर को हो गया। इन्होंने गिनानों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें लिखी हैं जो आज हमको ना नजर आती हैं ना दिखती हैं, मगर उस जमाने के अंदर उनका इल्म ऐसा था। ये आर्कटिक और एंटार्कटिक टू कॉन्टिनेंट्स हैं, लोगों को उस वक्त पता नहीं था। ये तो 200-250 वर्ष हुए साइंटिस्ट को ये पता लगा कि यहाँ भी दो कॉन्टिनेंट्स हैं। पीर का ये कहना कि नवे खंडे में सीचे रोपिया, यानी दुनिया की तमाम जिधर भी बस्ती है, जिधर भी मैन काइंड और पॉपुलेशन है, हालांकि यहाँ मैन काइंड का बात नहीं, यहाँ तो पशु पंछी इंसेक्ट्स एनिमल्स रेप्टाइल्स और वनस्पति वेजिटेशन, जिस जिस जगह भी जहाँ जहाँ भी लाइफ है, वो सब के सब नबी मोहम्मद के नूर से बेनिफिट उठाते हैं। रसूल अकरम फरमाते थे, खुदा ने सबसे पहले अपने नूर में से मेरा नूर जुदा किया और मेरे नूर से सारी क्रिएशन बनाई। चिल्ड्रन मस्ट अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर आइटम दैट नबी मोहम्मद द होली प्रॉफिट सेड दैट गॉड क्रिएटेड माई नूर सेपरेटेड एक्चुअली फ्रॉम हिज नूर एंड एवरीथिंग हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम माई नूर, दैट मीन्स मोहम्मद नूर। ऑल द प्रॉफिट्स हैड द नूर ऑफ मोहम्मद, सो एक्चुअली मोहम्मद वॉज लिविंग एवरी टाइम एंड इवन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद through his progeny, Hazrat Hasan, Peer Hasan, and all his children, up to Maulana Hazrat Imam, the Peeri Jomo, or the Noor of Muhammad, the Noor of Nabi, the guidance of Nabuwat, is continuous. And it will remain continuous till the end of this world, and it will go hand in hand, side by side with Imamat. We must understand these two principles of our fundamentals, that Imamat and Nabuwat, they go together and they will never be separated anytime, anywhere. This is known as Nabuwat and Imamat. This is known as a rope of Allah Hablil Mateen. Rasul Akram farmate the, har nabi ke andar mera noor hai. Agar har nabi ke andar Muhammad ka noor hai, to har nabi Muhammad ka hi avtar tha. Rasul Akram ne ऐसी हमें बहुत सी खबरें दी हैं कि जो कमबख्ती से यानी अनफॉर्चुनेटली दब गई हैं लिटरेचर के अंदर और आम जनता को, आम पब्लिक को, आम मुसलमानों को उसकी खबर नहीं रही। 10-11 साल पहले मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि ने हमको यानी जमात को इंस्टीट्यूट की मारिफत से फरमाया कि तुम्हारी मजहब की और इस्लाम की शुरुआत की जो छुपी हुई दबी हुई और अनअवेलेबल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको डिग आउट करो, उन असल चीजों को पढ़ो। उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो शिया मजहब के साथ मिलती हैं, वो चीजें भुलाई गई हैं। भले आम लोग जो हैं वो इन चीजों को कबूल न करें, मगर वो लोग इनकार नहीं कर सकेंगे कि ये झूठे हैं। इसके अंदर एक चीज इमामत के मुतालिक है कि इमामत को सिर्फ थोड़े आदमी मानते हैं, हार्डली 5%-7% मुस्लिम पॉपुलेशन बिलीव्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ इमामत, द रेस्ट डोंट बिलीव। वी आर 1 billion मुस्लिम्स ऑन अर्थ, 1 billion, maybe little more now because Muslims are multiplying very fast like Chinese. Most of them, 90% of Muslim population, do not believe in Imamat. Shall we follow the majority? No. There is no democracy in religion. There is no democracy in religion. Because if democratic principles apply to your religion, then religion does not remain religion, it becomes a political society. God appoints prophets. People do not elect or choose their prophets. Are what is prophet? It's a very high thing. Is there any person who has chosen his mother and father? ऐसा कोई है जिसने अपने माँ बाप को सिलेक्ट किया हो कि तू मेरा बाप बनना, तू मेरी माँ बनना? तो खुदा के जो नबी हैं, उनको लोग किस तरह से अपॉइंट, अपने माँ बाप को अपॉइंट नहीं कर सकते, नबियों को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? वो तो खुदा अपॉइंट करता है। मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर मौजूद था, हर नबी जो था वो मोहम्मद था, और मोहम्मद के बाद हर पीर जो है वो मोहम्मद है। अली से पहले जितने भी पात्र थे उनमें अली का ही नूर था। अगरचे हमने इमामत का सिलसिला मौला अली से शुरू समझा, यानी हिस्ट्री के अंदर जो अपहीवल्स रहे, हिस्ट्री के अंदर जो चेंजेस होते रहे, मेजर चेंजेस, उनके भी डिफरेंट सेक्शंस हैं। हम बहुत दूर तक चले जाएं जो आम लोग नहीं समझ सकेंगे, तो हमारे पीरों ने, हमारे इमामों ने, हिस्टोरियंस ने, यानी शिया प्रिंसिपल की बात करता हूँ, अली को अव्वल इमाम मान के उसके बाद तमाम इमामत का सिलसिला शुरू किया। इसनाशरी लोग 12 इमाम तक ठहर गए, बोरे लोग 18-20 इमाम तक ठहर गए, जैदीय लोग भी 4-5 इमाम तक ठहर गए, और जो सेवनर्स थे वो भी 7 इमाम के बाद ठहर गए। लेकिन एक इस्माइली फिरका रहा कि जो चलता रहा और आज तक चलता है, और इंशाल्लाह हमारा हमेशा दावा रहा है कि कयामत तक इमामत कायम मजबूत रहेगी, कयामत तक। और इसी तरह से पीरी जोमा भी कयामत तक रहेगा। हजर इमाम इमाम भी है, हजर इमाम पीर भी है। ये हमारा 49th इमाम है, मौलाना हजर इमाम शाह करीम इज अवर 49th इमाम, बट ही इज 50th पीर, कीपिंग नंबर 1 विद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ही वाज अवर अव्वल पीर मोहम्मद, एंड सेकंड पीर वाज इमाम हसन, थर्ड पीर वाज पीर कासिम शाह, son of Imam Hasan. So like that, this line has come also up to Maulana Hazrat Imam. He is our 50th peer. Now what is the difference between Shah, that means Imam, and the peer? Shah is Imam. It's the direct Noor of Allah through Maulana Ali. And we can say that every Imam is Ali. And absolutely righty. Every Imam is Ali. Similarly, every successor to the Prophet is Peer, and he is holding the Noor of Nabuwat. Although Nabuwat stopped and ended at Prophet Muhammad, but the guidance continued. Peer is appointed by Imam, and he guides the Jamaat accordingly. Have you heard Talikas? Yes. Have you ever marked why Hazrat Imam being one entity? Hazrat Imam is one entity, one body. Yet he writes, I send you my best loving paternal, maternal blessings. Now, paternal and maternal, father-like and mother-like. So Hazrat Imam is also father, he is also mother. This fatherhood belongs to the imamathood, and piratan is motherhood. So therefore Hazrat Imam is writing as imam as well as peer. Hamare ye mazhab ka principle aajkal hum zara bhool gaye hain, ya thode perplexed ho gaye hain, ya hum thode doubt mein pad gaye hain. Aaj majority ismailiyon ko, khas taur pe jo youngsters hain, unko pata nahi hai ke peer kaun hai, wo jante hi nahi. Are peer ke bagair to chutkara nahi, पीर के बगैर छुटकारा नहीं। हम जितनी भी इबादत करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह से लेके यानी कयामत तक, जो हिसाब बिगड़ की रूहें होंगी उनकी शिफायत कौन करेगा? मोहम्मद करेगा। मोहम्मद शिफायत मीन्स इंटरसेशन। हजरत रसूलुल्लाह फरमाया कि जब खुदा तख्त पे बैठेगा, लोगों के हिसाब लेगा, मैं उसके बाजू में खड़ा हूंगा, और मेरी इंटरसेशन से खुदा उनके गुनाहों को माफ कर दे, बख्श देगा। यही काम पीर का है। तो ये जो खुदा की वाड़ी है मैनकाइंड, और इसके साथ एनिमल किंगडम, वेजिटेशन किंगडम, इंसेक्ट किंगडम, वट एवर इज द फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस बिलोंग्स टू मौला बापा। ही इज द लॉर्ड एंड सुप्रीम लॉर्ड। and Nabi Muhammad, whether you call him Jesus, because Jesus was also Nabi Muhammad's Noor. Moses had Nabi Muhammad's Noor. Noah had Nabi Muhammad's Noor. Joseph had Nabi Muhammad's Noor. All the prophets, 124,000 prophets, they had Noor of Nabi Muhammad. And peers also had the Noor of Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad, Bisham says Guru Brahma, according to this Indian language, because Indians are also created by Mola Bapa. Chinese are also created by Mola Bapa. He is the creator. So everything belongs to him. So this is the Vani. Now here particularly I am talking about the Jamaat. Gat Jamaat hai, wo Mola ki Vani hai. Is Vani ke andar kya hota hai? Fruit bhi hote hain, phal bhi hote hain, phool bhi hote hain, kaante bhi hote hain, patte bhi hote hain, ghas bhi hoti hai, weeds bhi hote hain, aur phir vaadi ke andar insects bhi hote hain, vaadi ke andar panchi birds aake khana bhi khate hain, vaadi ke andar pani bhi hota hai, khatar bhi hoti hai, vaadi ke andar kachra patthar wagaira bhi hote hain, kyunki jo vaadi hai उसमें ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, यूजफुल भी होती हैं, यूजफुल नहीं भी होती। वीड्स होते हैं, वो फल फूल को खा जाते हैं, इसके लिए वीड्स उखाड़ के फेंक दिए जाते हैं, ड्रिवन आउट। तो जमात के अंदर फूल भी हैं, फल भी हैं, पत्थर भी हैं, झाड़ भी हैं, घास भी है, वीड्स भी हैं। हर जमाने के अंदर अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, हर जमाने के अंदर, अली से पहले भी, अली के बाद भी, अली की दुश्मनी करने वाले जमात ही में से निकले। आप हिस्ट्री पढ़ो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह हमेशा फरमाते थे और हजरत इमाम भी फरमाते हैं कि तुम अपनी हिस्ट्री पढ़ो, जितने भी दुश्मन निकले दीन के दुश्मन, वो दीनदारों जमात ही में से निकले। बास तो बड़े बड़े भगत थे, बास तो बड़े बड़े दाई थे, बास तो बड़े बड़े मिशनरी थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता बेईमान बन गए, दीन के दुश्मन हो गए। मौलाना इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने एक दफा मुसाफरी की। मुसाफरी में एक जाते जाते एक मार्केट थी जहां लोग गुलामों को बेचते थे, गाय बकरी बेचते थे, ऑक्शन थी। वो जमाना ऐसा था, स्लेव्स को बेचा जाता था। 12 बरस का एक लड़का था, मौला को बड़ा इंटेलिजेंट लगा। इमाम मोहम्मद बाकर ने उस लड़के को खरीद लिया और वाकई वो लड़का बहुत इंटेलिजेंट निकला, उसको खरीद लिया, ट्रेंड किया, मजहब सिखाया। वो ऐसा चालाक, ऐसा होशियार निकला, मौला ने उसका नाम अब्दुल्ला रखा। उसका बाप जो था वो खताब था, ये बाप बेटे दोनों, ये इसका नाम खुद का खत्ताब था, फिर इसका बेटा हुआ जो अब्दुल्ला इब्न खत्ताब हुआ। जब ये थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत अकल वाला हुआ, बहुत इलम वाला बन गया, इमाम मोहम्मद बाकर जो थे वो सेमिनार्स वगैरह मनाया करते थे और यही सेवा हजरत इमाम जाफर सादिक का रहा, तो मौलाना मोहम्मद बाकर ने इस गुलाम को इमाम जाफर सादिक अपने बेटे को भेंट दे दिया, गिफ्ट दे दिया। इमाम की इसने बड़ी खिदमत की, ऐसी खिदमत की कि इमाम खुशी होते 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 इसको दाई बनाया, दाई उल कबीर का टाइटल दिया और आगे बढ़ा तो दाई उल दुआत का टाइटल दिया। हमारी हिस्ट्री के अंदर अगर आप ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़ा टाइटल क्या है, तो वो दाई उल दावत है, दाई उल दुआत, उसी को हुज्जत कहते हैं। लेकिन हुज्जतुल इमाम नहीं, खाली हुज्जत, हुज्जत यानी प्रूफ, एविडेंस। हुज्जतुल इमाम जो नाम है वो पीर का नाम है। जहां भी आप अपनी अरेबिक पीरियड की हिस्ट्री में हुज्जतुल इमाम समझो तो वो पीर है। अलबत्ता बाज़ दफा मरने के बाद उनके मरने के बाद हमारे इमामों ने कईयों को पीर का टाइटल दिया, उनको हुज्जतुल इमाम का टाइटल दिया, मगर मरने के बाद, जैसे कि इमाम मौलाना अली शाह महबूब ने वजीर इस्माइल गांगजी को मरने के बाद पीर का दर्जा दिया, उसकी जिंदगी में हम उसको पीर नहीं कह सकते थे, लेकिन आज हम उसको कहते हैं। 1200 बरस हो गया उसको गुजरे हुए, लेकिन आज हम कहते हैं कि पीर इस्माइल गांगजी 50 बरस 52 बरस पहले पीर सबजली गुजर गए, हम उसको उस वक्त पीर नहीं कहते थे, वो मिशनरी थे, लेकिन आज हम उसको कहते हैं पीर मिशनरी सबजली। इस तरह हमारी हिस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हुए कि जिनको मरने के बाद इमाम ने हुज्जतुल इमाम का टाइटल दिया, जैसे कि बाज दफा हम हसन बिन सभा के लिए ये टाइटल पढ़ते हैं, तो हसन बिन सभा कोई पुठियों के पीर नहीं थे, वो तो एक इसनाशरी थे और कन्वर्ट होके इस्माइली मजहब में आए और ये दर्जा पाया कि दाईउल दुआत बन गए, और मरने के बाद इमाम ने उसको हुज्जतुल इमाम का यानी पीर का दर्जा और टाइटल दिया। हमारे मजहब में बहुत से ऐसे हैं। तो ये जो खत्ताब था इसको भी इमाम ने आहिस्ता 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 ये दर्जा दिया कि वो दाईउल दुआत बन गया। बहुत दफा ऐसा होता है इमाम के खेल पहचान नहीं सकते, अगर हजर इमाम की सब बातें हम समझ सकते हैं तो फिर हमको इमाम की जरूरत क्या है। कभी हम इतने अकल वाले हैं कि हजर इमाम की सब बातें हमारी समझ में आ जाएं, तो फिर हमारे में और इमाम में तो फर्क नहीं रहा। दीनदारों कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपने हजर इमाम की सब बातों को समझ सके। हमारा एक ही फर्ज है, फॉलो द फरमान ऑफ हजर इमाम, Never criticize, never bring any doubt in your mind to the effect of that farman. Follow it blindly. But try to understand and try to find a way how to follow the farman. But never object it, never doubt it. Imam ka farman manana chahiye, usme shak nahi hona chahiye. Farman manane ke liye रास्ता निकालना चाहिए कि मैं ये फरमान पे कैसे अमल करूं। बाकी फरमान मानना ही हमारा इस्माइली मजहब है। तो ये जो खताब दाईउल दुआत बन गया, इसको मगरूरी आ गई, इसको प्राइड आ गया, इसका ईगो जाग उठा, इसने बहुत सी ऐसी चीजें देखी कि ही फाउंड दैट इमाम वॉज वीक। Imam is very clever. He will test anyone. And when he wants to test, well, he becomes weak. Isko imam ki kuch weaknesses nazar aayi. Usse iman kharab ho gaya. Jab iman kharab ho gaya, to imam ne phir apna sar uthaya. Aur ye samna na kar saka. Imam ne isko dismiss kiya. तो ये रिवेंज में जाके इसने अपना एक सेक्ट शुरू किया। इस्लाम की तवारीख के अंदर मुसलमानों में एक सेक्ट है, उसका नाम है खत्ताबिया। ये इस्माइली दाई था जो काफर बन गया और इमाम ने उसको डिसमिस किया। जिस तरह शैतान अजाजील रांडा गया, खुदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, इस तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इस दाई को डिसमिस करके मजहब से निकाल दिया। इसने अपने जाके अलग मजहब शुरू किया, मगर वो अंदर का नूर निकल गया, ऑरेंज में से जूस निकल गया, और अब बाकी रहा छिलका, थ्रो इन गार्बेज, इट्स यूजलेस। तो क्या हुआ, जो इसके फॉलोअर्स थे उन्होंने ही इसको मार डाला। इसका लड़का अब्दुल्लाह इब्नुल खताब इमाम की सेवा में रहा। ऐसे बहुत से वाकयात हमारी हिस्ट्री के अंदर हैं। बरजवान नाम का एक ऐसा ही गुलाम, खरीदा हुआ गुलाम, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया, और मौलाना इमाम हाकिम छोटे थे, 11-12 साल की उम्र में मौलाना हाकिम बेअमरिल्ला जब इमाम बने, तो बरजवान तो उनके बाप के टाइम्स के बहुत काबिल था, बहुत अकल वाला था, लगभग प्राइम मिनिस्टर की तरह था, और इमाम को छोटा समझ के, इनोसेंट समझ के, इनएक्सपीरियंस समझ के, चाइल्ड समझ के, तो मौला के साथ बिहेवियर जो करता था तो इस तरह करता था कि मौला जाने उसका शागिर्द या स्टूडेंट होवे और वो मौला का मास्टर होवे। मौला टाइम देखते रहे। मौलाना हाकिम की जो माँ थी वो रशियन प्रिंसेस थी, कुछ भी बात बनती थी माँ को कहते रहते थे। मगर इमाम बन जाने के बाद उन्होंने सब ताकत अपने पास रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता जब मौला 18 बरस के हुए तो कैरो की फातिमी सल्तनत का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ये जो बर्जुआन था ये ऊंचा लंबा तुर्की था, असल में बहुत ताकत वाला, बहुत अकल वाला, इन्फ्लुएंस वाला, सारी सत्ता कंट्रोल एम्पायर की इसके हाथ में थी। तो जब भी अपने यारों दोस्तों के साथ बैठे बढ़ाई मारे, इमाम को क्या कहे, छिपकली जी, हाउस लिजर्ड नहीं, ऐसी छोटी हाउस लिजर्ड होती है 4-5 इंच की, इसको छिपकली कहते हैं, ये बर्जुआन बदमाश हमारे आका मौला शाह हाकम को छिपकली कहता था। ये छिपकली कितनी कमजोर वीक है, मतलब के ही वॉज टेलिंग द पीपल इट इज नॉट द इमाम बट आई एम द कंट्रोलर ऑफ एवरी पावर। मौला को छिपकली कहता था, मौला को पता था, सब सुनते भी थे। 18 साल के हो गए, सारा कंट्रोल ले लिया। एक दिन एक गुलाम को कहा, जाओ बर्जुआन को बुलाओ और उसको कहना कि तुमको छिपकली ने बुलाया है, अब वो छिपकली जवान अजगर बन गई है, अजगर मीन्स पाइथन, और तू अभी छिपकली बन गया है, तेरे को खाने के लिए तैयार है, ये मैसेज जाके दो और बुलाओ। ये गुलाम गया, मौला का गुलाम था, डरता नहीं था। इसने जाके कहा बर्जुआन को कि मेरे आका ने फरमाया है कि वो जो छिपकली थी ना तू कहता था, अब वो अजगर बन गई है, पाइथन बन गया है, और तू अभी छिपकली रह गया है, तेरे को खाने के लिए तैयार है, आओ तुमको बुलाते हैं। आना पड़ा। मौलाना इमाम शाह हाकम अपने महल के ऊपर बालकनी में खड़े थे और इसका इंतजार करते थे। बर्जुआन घोड़े के ऊपर बैठ के जब आया, एक वो जमाना था कि मौला पांव पे चलते थे और बर्जुआन बदमाश घोड़े पे चढ़ता था, मगरूरी। मगर आज जो भी आया तो मौला को दूर से देखा, गेट के ऊपर घोड़े से नीचे उतर के आ रहा था, तो इसके मुंह से कोई खराब लफ्ज निकला, पीछे जो दो गार्ड थे ना उन्होंने इसको मार डाला, मौला तक पहुंचने ना दिया। मौला ने हंस के फरमाया, तुमने उसको मेरे दूर से दूर ही रखा, नजदीक आने देते तो शायद कुछ और अंजाम नजर आता। इस तरह के वाकयात हमारी हिस्ट्री में बने हैं। इमाम को जो आदमी नहीं समझता उसका जब ये पांव स्लिप हो जाता है तो वो खड में गिर जाता है, डिच में पहुंच जाता है। इमाम और पीर की मोहब्बत और शनाख्त में रहो। तो मैं आपको अर्ज करता था दीनदारों, हर जमाने के अंदर मौला की वाड़ी में से, वाड़ी जो सारी दुनिया उसकी वाड़ी है, मगर मैं वाड़ी का छोटा सा हिस्सा, जैसे कि हमारी जमात है, मैं उसका ही जिक्र करता हूँ कि इस वाड़ी के अंदर कांटे भी हैं और इस वाड़ी के अंदर श्रब्स भी हैं, इस वाड़ी में फूल भी हैं, इस वाड़ी में फल भी हैं, और इस वाड़ी के अंदर कचरा भी है, पत्थर भी हैं, वीड्स भी हैं, और इन वीड्स को उखाड़ के फिर फेंक दिया जाता है। और हर जमाने के अंदर हमारे मजहब में से बहुत से लोग निकलते रहे। हमारा मजहब जो है ना वो जीता है, लिविंग एंटिटी है। हमारा मजहब इज लाइक ए लिविंग बॉडी, और इस लिविंग बॉडी के अंदर से पसीना भी निकलता है, बाल भी काटे जाते हैं जो फेंक देते जाते हैं, और पाखाना मूत्र भी निकलता है। तो ऐसे वो लोग जो गंदे हैं वो गोमूत्र की तरह इस शरीर में से निकलते रहते हैं। हमारे मजहब की, हमारी जमात के अंदर से बहुत बेईमान लोग निकलते रहते हैं हर जमाने के अंदर। और मैं 5 साल से कहता हूँ मैंने यह सबसे पहले 5-6 बरस पहले कालगरी में वाज की थी कि दीनदारों ऐसा वक्त आएगा, इमाम ऐसे खेल खेलेगा, ہمارے مذہب کی گہری اونڈی قیمتی باتوں کو لوگ جو نہیں سمجھ سکیں گے وہ آہستہ آہستہ ہمارے مذہب سے ہٹ جائیں گے. پہلے جماعت خانہ چھوڑ دیں گے اور پھر جماعت خانہ چھوڑنے کے بعد وہ گھر پہ جو دعا پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں گے. پھر ان کا کانٹیکٹ اپنے مذہب سے الگ ہو جائے گا. اور کیا ہوگا کہ جو بھیڑ ایکلی ہوتی ہے تو اس کو ولف پکڑ کے کھا جاتا ہے, تو پھر ان کو پھر شیطان پکڑتا ہے. اور ایسے لوگوں کی سنگت لگتی ہے کہ اسماعیلی مذہب سے ہٹ کے بے ایمان بن جاتے ہیں, دین کے دشمن بن جاتے ہیں, ایک دو نسل جاتی ہے مذہب میں سے نکل جاتے ہیں. ایسا ہوتا رہا ہے, ہوتا رہے گا. کوئی نوائی کی بات نہیں کہ ہمارے مذہب میں سے کچھ لوگ اور بھی نکل جائیں, کیونکہ آج بھی ہمارے مذہب کی ہماری جماعت کے اندر کچھ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جو اندر اندر لوگوں کو امام اور اپنے مذہب کی دوسری باتوں کے ورودھ میں پروپیگنڈا کرتا ہے. ٹورنٹو میں بھی ہیں, وینکوور میں ہیں, نیو یارک میں ہیں, مونٹریل میں ہیں, ہر جماعتوں کے اندر تھوڑے بہت ایک دو پانچ پچیس ہیں. ان بہتوں کو تو ہم جانتے بھی ہیں, لیکن وہ پڑے ہوئے ہیں. پڑے اس لیے ہیں کہ جو مالی ہے گارڈنر وہ سب کو پانی دیتا ہے تو ویڈز کو بھی پانی تو ملتا ہے, اس لیے لیلے رہتے ہیں. مگر جب مالی کی نظر پڑے گی تو وہ اکھاڑ کے پھینک دے گا. اس یہ جو واڑی ہے ساری جماعت ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ کو جدے جدے پھول ہیں, گلاب بھی ہے, چمبیلی بھی ہے, موتیا بھی ہے, گارڈینیا بھی ہے, الگ الگ پھول ہیں, ان کی خوشبو جدی ہے, ان کا رنگ جدا ہے, پھل بھی بہت ہیں. پھل کے اندر ڈاڑم بھی ہے, یعنی پومگرینیٹ بھی ہے, پپئی ہے, کیلے ہیں, آم ہیں, ایپل ہیں, پیئر ہیں, پیچیز ہیں, سب طرح کے الگ الگ میوے ہیں. تو ہماری جماعت کے اندر الگ الگ میوے بھی ہیں. کوئی کھوجا ہے, کوئی شمسی ہے, کوئی افغانی ہے, کوئی ایرانی ہے, کوئی چینی ہے, کوئی رشین ہے. یہ سب حضرت امام کے میوے اور پھول ہیں. یہ سب جتنی بھی جماعت ہے, بھانت بھانت کی جو جماعت ہے, وہ مولا کی واڑی کے پھول پھل ہیں. اے جی چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا کیے کیے تھانے وسنتا. صرف آج کی بات نہیں, ہر زمانے کے اندر, ان ایوری پیریڈ, یا مولا تیرے جو جیو ہیں, تیرے جو مالک کی ملکت ہیں, یعنی تیری جو پراپرٹی ہے, یہ سب تیرے جیوڑے ہیں, یہ سب تیری کریشن ہے. اور جدا جدا جگہ کے اوپر, تھان کے اوپر رہتے ہیں. کوئی اس ملک میں رہتا ہے, کوئی اس ملک میں. مولانا حضرت امام کے پاس ایک دفعہ کچھ باتیں بنتی تھیں تو عرض کی گئی کہ خداون کینیڈا کے اندر فلانی چیز ایسی ہوتی ہے, پاکستان میں یوں ہوتا ہے, انڈیا میں ایسا بنتا ہے, افریقہ میں ایسا ہوتا ہے, اور کبھی ہم سلمیا وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں یہ چیز ہے ہی نہیں. تو مولا فرماتے ہیں ویرائٹی جو ہے نا, اٹس اے سورس آف اسٹرینتھ. ویرائٹی ہی سورس آف اسٹرینتھ. مولانا حضرت امام نے آج سے 606 برس پہلے اپنی سلور جوبلی کے ٹائم کے اوپر کچھ اشارے کیے. ان اشاروں کو حضرت امام نے 2-3 دفعہ ریپیٹ بھی کیا, اور 6 ریپیٹیشن تنزانیہ کے اندر ہوا, 88 کے اندر اکتوبر مہینے میں. جب مالا دارالسلام آئے تو آپ دارالسلام کے فرمان تو سنے ہوں گے. مونزا میں فرمان کیا, دارالسلام میں کہا کہ فرمان کیا, اس کے پہلے فرمان کر چکے, پرائیویٹلی بھی بہت مولا کہہ چکے. مولانا حضرت امام فرمایا آج تک میں ان اسماعیلی مریدوں کے پاس رہا کہ جو نون تھے, اور امام ان کے پاس آتا جاتا تھا جیسے انڈیا, پاکستان, افریقہ وغیرہ. مولا فرمایا ابھی میں اپنا ٹائم زیادہ ان مریدوں کے لیے خرچ کروں گا کہ جن آج تک نگلیکٹ ہوئے اور امام ان کے نزدیک زہر بھانے نہ جا سکا. وہ وقت آئے گا کہ جب افغانستان کے, ایران کے, چین کے, رشیا کے جو اسماعیلی ہیں, میرے مرید ہیں, उनको ये टाइम मिलेगा कि वो लोग बाहर निकल के मुसाफरी कर सके, तुमसे मिल सके, आ जा सके, तुम उनको मिल सकोगे, वो तुम्हें मिल सकेंगे। इन इशारों के अंदर बड़े भेद हैं, इन इशारों में बड़े भेद हैं। हमारे पीरों ने जो गिनान लिखे हुए हैं, दिनदारों, जो ये गिनान गुरपीर सतगुर नूर से लेके और पीर ताज दिन तक हमारी पुठियों के पीरों ने लिखे, और बाद में इन पीरों की जो औलाद थी, चिल्ड्रन थे, उन्होंने भी बहुत से गिनान लिखे, जैसे कि पीर हसन कबीर दीन के बड़े फर्जंद इमाम शाह थे, सईद इमाम शाह के बहुत फरमान है, और सईद इमाम शाह पीर सदर दीन के ट्रेंड किए हुए थे। पीर सदर दीन ने अपने पोत्र को ट्रेन किया, पीर इमाम शाह ने अपने बाप की ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन दादा की ट्रेनिंग ली, और पीर इमाम शाह ने ऐसे गिनान लिखे हैं, ऐसी बातें लिखी हैं कि उसमें पीर सदर दीन की बास आती है। और भी बहुत से सैयदों ने, पीरों की औलाद ने गिनान लिखे हुए हैं। इन गिनानों के अंदर सटल इशारे हैं, जिस तरह से क्रिसमस के टाइम के ऊपर बहुत से लोग छोटी छोटी बत्तियों की सीरीज झाड़ में भी लगा देते हैं, जिसको क्रिसमस ट्री कहते हैं, तो वो बलती रहती हैं, बुझ जाती हैं, जलती हैं, बुझ जाती हैं, कोई एक इधर है, कोई उधर है, कोई इधर है। जब वो बुझ जाती हैं तो नजर नहीं आती, लेकिन जब जलती हैं तो नजर आती हैं। गिनानों के अंदर इसी तरह से ये छमकले हैं, कहीं 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 नूर की ये बत्तियां हैं, और ये बत्तियां जब भी जलती हैं तो हमें आंख से नजर आती हैं। माफ करना, आदत तो नहीं लेकिन क्या करो। मोमिनो, इस तरह हमारे गिनानों में पीर ने अपने जमाने तक की बातें की, मगर आने वाले भविष्य की भी बातें की, और आज भी हमारे पास हमारे गिनानों के अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं कि जो अभी नहीं हुई, ऐसी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि स्पेस ट्रेवल अभी बाकी है, ये तो शुरुआत हुई है खाली, जैसे कि ये जमाना जब भी निकल जाएगा, दुनिया में कितना दुख आएगा, तकलीफ आएगी, दुनिया में कितनी आबादी हो जाएगी, कितने गुनहगार होंगे, कितने नेक मोमन होंगे, उनका अंजाम एंड क्या होगा, सूरज का, चांद का, सितारों का, जमीन का, दूसरे प्लेनेट्स का एंड कैसे होएगा, कभी होएगा, टाइम भी दिया हुआ है, उसकी सोर्स भी बताई हुई है, मेथड और वेज भी बताए हुए हैं, तो उस जमाने तक दुनिया के ऊपर इंसान की हालत क्या होगी, वो भी हमारे गिनानों के अंदर इशारे किए हुए हैं। कौन से इमाम के बारे में क्या बात बनेगी, उसका भी जिक्र है। सारी दुनिया का मालिक मौला बापा है, तो वो जो बनाओ अभी बनने वाले हैं नेक्स्ट 100 और 125 ईयर्स में, उन बनाओ की तैयारियां अभी हो रही हैं। इन तैयारियों में एक ये बात है कि ये दरवाजे खुल गए, कम्युनिज्म घट गया, कमजोर हो गया। ईस्टर्न यूरोप तो एक महीने के अंदर, 5 वीक के अंदर इस तरह से उठा है, इस तरह से उठा है कि जैसे सोया हुआ आदमी जाग के उठे और तलवार लेके अपने दुश्मन को मार डाले, इस तरह से उठे। 40 बरस की बनाई हुई बर्लिन वॉर को उन्होंने 24 घंटे के अंदर फना फातिया कर दिया, और छोटे छोटे टुकड़े बना के डब्बे में डाल के सारी दुनिया में उन्होंने फैला दिए, सुवेनियर ऑफ बर्लिन वॉल। ये सारे बनाओ 5 वीक में आपने कभी उनको देखा है? वॉच करते रहे तो आपको पता लगा कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म इस तरह उड़ गया कि जैसे पेट्रोल हवा में उड़ जाता है। अभी वारी आई सदर्न रशिया की, लिथुएनिया में तकलीफ हो गई, गोरबोचाफ गया उधर समझाने को, वो नहीं माने, लेटविया में तकलीफ हुई, रोमानिया में तकलीफ हुई, अजरबैजान में तकलीफ हुई, आर्मेनिया में तकलीफ चालू है। अभी ठहरो, एक दो और भी तैयार हो रहे हैं, वो वॉच करते हैं कि ये जरा ठंडा होवे तो हम गर्म कर देवे। और ये सारे इलाके मुसलमान हैं, 7.5 करोड़ मुसलमान, 7.5 करोड़, उसका मतलब ये है 75 मिलियन मुसलमान रशिया में हैं। आज मैं 10 बरस से मैं वॉच कर रहा हूँ रशियन हिस्ट्री को. मेरे दो बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिक्स के अंदर, एक चाइना और एक रशिया, क्योंकि ये दोनों हमारे ज्ञानों के साथ कनेक्ट होते हैं, खासतौर पे चाइना. और हमारे ज्ञानों के अंदर कम से कम 500 जगह चाइना की जिक्र किया हुआ है, वन वे और दी अदर वे. मैं चाइना की हिस्ट्री, चाइना के इवेंट्स को वॉच करता रहता हूँ, रशिया को भी वॉच करता रहता हूँ. ये सारे के सारा जो इलाका है सदर्न रशिया के अंदर, ये रशिया का इलाका नहीं है, ये ऑटोमन एम्पायर का इलाका था. 1914 की लड़ाई जब लगी, इस लड़ाई के अंदर जर्मनी ने शुरुआत की, और बाद में जो तुर्की है जिसको इंग्लिश में हम टर्की कहते हैं, ये ज्वाइन हो गया जर्मन्स के साथ. उस तरफ जर्मन लड़ते रहे, इधर टर्क लड़ते रहे. जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के साथ इटली आ गए और जापान मिल गया, इस तरह से टर्की जर्मनी के साथ मिल गया. वो गिर गया तो ये भी गिर गया. टर्की जब हार गया तो ये जीते हुए क्रिश्चियन पावर्स ने टर्की मुसलमान, और ये जो ब्रिटिश और फ्रांस और अमेरिका, ये कौन थे? क्रिश्चियन, इवन रशिया भी. तो इन्होंने मिलके मुसलमानों को खत्म करने के लिए हाथ में सीजर्स लेके जिस तरह कागज काटते हैं, ऐसा इसने ऑटोमन एम्पायर को काटना शुरू कर दिया. ये रोमानिया, अल्बेनिया, हंगेरी, जिकोस्लोवेकिया, ये सारे बल्गेरिया, इवन ये सारे टर्किश एम्पायर में थे. आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बदख्शान और हमारा ये अजरबैजान, ये सब टर्किश गवर्नमेंट थी. इन्होंने काट काट के हिस्से बकरे कर दिए, छोटी छोटियों को आजाद कर दिया. और रशिया जो रीछ की तरह, उसका एम्बलम बेयर है ना, इसने ये नीचे आके इनको ग्रैब कर लिया. लेनिन और स्टालिन के लश्कर ने इनको लूट लिया और मुसलमान हारे हुए थे. अब इस्लाम आंखें खोल रहा है. ये 75 मिलियन रशियन मुसलमानों के अंदर 14 मिलियन इस्माइली हैं, मे बी 15 मिलियन इस्माइली. बहुत दफा रिपोर्टर्स हमको सारी जिंदगी, सारी दुनिया के अंदर से कहते हैं 14-15 मिलियन. अरे 15 मिलियन तो खाली रशिया में है. और ये कब हमको सच्ची फिगर उस वक्त मिलेगी कि जब मौला बापा घोड़े पर बैठ के सवारी करेगा. वो कब करेगा? देरी है, इस जौमे में नहीं होगी, शायद अगले जौमे में भी ना हो. गए पीरों ने तो नाम भी दिया इमाम का, कौन से जौमे में असवारी करेगा. ईयर भी दिया है, मंथ भी दिया है, डेट भी दी है. मैं कह चुका हूं आपको एक दफा एक दादवाज में, हम ऐसा सोचते थे. मैं खुद अफगानिस्तान गया हुआ हूं और मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि 7.5 लाख इस्माइली अफगानिस्तान में हैं. और अब बीबीसी की बनाई हुई वो डॉक्यूमेंट्री हम कैसेट देखते हैं तो पता लगा कि वहां तो 2 मिलियन इस्माइली खाली अफगानिस्तान में. मैं तो 7.5 लाख की बात करता था, मगर ये निकले 20 लाख. हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए. इस्लाम के साथ साथ इस्माइलियों में जागरूकता पैदा होती है. हमको हजर इमाम 10-11 बरस हुए इशारे करते रहे कि तुम मुसलमानों से मिलो, तुम इस्लाम की चीजों को सीखो, इस्लाम की बहुत सी चीजें जो तुम्हारे मजहब से मिलती हैं उनको एडॉप्ट करो. लेकिन आपको मालूम है ना, हम जरे टेढ़े खीर हैं, जल्दी से मानते नहीं. मार पड़ती है तो मानते हैं, नहीं तो नहीं. चलो मौला मालिक बैठा है, कभी कभी तूफानी बच्चा होता है, तभी क्या करे, बच्चा उसका है ना, घर से तो नहीं निकाल सकता, डांट डिपट करता रहता है. लेकिन माँ उसको भी खाना देती, बल्कि पहले उसको देती है कि तूफान ना करे. तो इसी तरह से तूफानी बच्चे को हम खोजों को उसने सबसे ज्यादा लात लगाई, क्योंकि हम बहुत तूफानी हैं. ये लोग बेचारे गरीब हैं, पक्के मोमन हैं, आबिद हैं. हमारी खराबियां जो हैं इनमें नहीं है. आप जब इन लोगों को मिलोगे तो आपको पता लगेगा, हैरान हो जाओगे कि उनके ईमान, उनके प्रेम, उनकी मोहब्बत के सामने हम मिट्टी की एक मुट्ठी भी नहीं है. मैं ईरान गया 25-26 बरस पहले, गर्मी का टाइम जुलाई महीना, नॉर्थ की साइड में मैं गया। उधर छोटे छोटे ऐसे गांव हैं, 200-200, 500-500, 1000 आदमी, 100% इस्माइली गांव है। किसी का नाम दीसबाद है, किसी का नाम करीमाबाद है, किसी गांव का नाम अमीनाबाद है, सुल्तानाबाद है, मोहम्मदाबाद है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, वो लोग खेडूत लोग हैं। मेरे साथ एक और भी इस्माइली था इंडिया का, हमको वो लोग इस तरह मान देते थे, ऐसी इज्जत देते थे कि जैसे वल्लाह कोई आसमान से बादशाह उतर आया हो। हालांकि हम इमाम के घर के कुत्ते हैं दीनदारों, मैं तो खसूसन तौर पे फख्र करता हूँ, या मौला मैं तेरे घर का कुत्ता बन के रहूँ तो भी तू मेहरबानी करना, शुक्र गुजार हूँ। और उन लोगों के सामने हकीकत में शर्माती थी, उनकी मोहब्बत देख के। गरीबी बेहिसाब है, उनके घरों में कुछ नहीं बिछाने को, बच्चे तो यूं ही मिट्टी में सो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कारपेट निकाला। उधर एक आदमी को एक बरस से सवा बरस लगता है एक कारपेट बनाने पे, और कारपेट की साइज कितनी, लगभग 3 फीट से लेके 6 फीट। ये करीमाबाद है, किसी गांव का नाम अमीनाबाद है, सुल्तानाबाद है, मोहम्मदाबाद है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे गांव हैं, वो लोग खेडूत लोग हैं। मेरे साथ एक और भी इस्माइली था इंडिया का, हमको वो लोग इस तरह मान देते थे, ऐसी इज्जत देते थे कि जैसे वल्लाह कोई आसमान से बादशाह उतर आया हो। हालांकि हम इमाम के घर के कुत्ते हैं दीनदारों, मैं तो खसूसन तौर पे फख्र करता हूँ, या मौला मैं तेरे घर का कुत्ता बन के रहूँ तो भी तू मेहरबानी करना, शुक्र गुजार हूँ। और उन लोगों के सामने हकीकत में शर्माती थी, उनकी मोहब्बत देख के। गरीबी बेहिसाब है, उनके घरों में कुछ नहीं बिछाने को, बच्चे तो यूं ही मिट्टी में सो जाते हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने कारपेट निकाला। उधर एक आदमी को एक बरस से सवा बरस लगता है एक कारपेट बनाने पे, और कारपेट की साइज कितनी, लगभग 3 फीट से लेके 6 फीट। ये कारपेट को एक बरस लगता है। अपनी इस्माइली भाइयां घर में घर का कामकाज पूरा करके फुर्सत के अंदर कारपेट बनाती रहती हैं, बुढ़िया बुढ़िया कारपेट बनाती रहती हैं। 90 बरस की एक भाई 90 ईयर्स की वो कारपेट बनाती थी। ये इनके घर में मुखी की माँ थी, इनके घर के अंदर हम लोग उधर उतरे और उन्होंने नीचे कारपेट बिछाया, खाना खिलाया और सफेद चादर बिछा के मुझे कहते आप थोड़ा आराम करो। वाकई मैं थका भी था, मैं थोड़ा लेट गया, गर्मी बड़ी थी। जब मेरी जरा जरा सी आंख में, बहुत ज्यादा नहीं सोया, हो सकता है 15-20 मिनट सोया होगा। आहिस्ता आहिस्ता मैं जाग रहा था तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैं सोचता था ऐसी गर्मी में ये ठंडी हवा कहाँ से आती है। जब हकीकत में मैंने आंखें खोली तो वो 90 बरस की बाई ने मुझे मक्खियां सताती थी, तो मेरे ऊपर उसने अपनी पछेड़ी मेरे ऊपर डाल दी और पंखा लेके मेरे सिर के पास पंखा कर रही थी। 90 बरस की बूढ़ी डोसी मुझको इस तरह से बच्चे की तरह सुला रही थी। मैं तबक के उठ गया, मैंने उसको फारसी में कहा, अम्मा क्या करती हो, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तू ये क्यों मेहनत करती है। कहती नहीं, तू मौला का माँ आदमी है। इतना उनका प्यार, इतनी उनकी मोहब्बत, इतनी उनकी खिदमत, उनके दिल पाक है। 1951 के अंदर हजरत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैह लगभग 90 बरस के बाद ईरान गए, क्योंकि 1840 में मौलाना हसन अली शाह माँ बाप जब ईरान से निकले तो कोई इमाम फिर वापस नहीं गए, लेकिन 90 ईयर्स के बाद मौलाना लगभग 90 ईयर्स के बाद मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ईरान गए। जब ईरान गए तो हजारों इस्माइली भाग के चले आए, पता भी नहीं था कि इतने इस्माइली होंगे। बढ़ते 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 लगभग 50,000 इस्माइली हो गए। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने उस वक्त 12 जन को भाइयों में से, ये मुझे याद नहीं कि भाइयां कितनी या भाई कितने थे, लेकिन टोटल 12 जने थे, इनको बुलाया और इनके कान के अंदर इसमें आजम दिया एक एक को। इसके पहले उनको इसमें आजम नहीं मिलता था, अभी भी नहीं है। ये 12 को मिला और मिल गया, उसमें कितने जीते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन सब बोले आज मैं तुमको बहिष्ट का मेवा देता हूं। बस ये तो उधर ही आंख बंद करके बैठ गए मौला के सामने। फिर मौला उनको फरमान करते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है तुमको मिलके, कि तुम लोग पाक हो, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा अंतकरण पाक है। इमाम के मुख से ये सर्टिफिकेट निकले कि तुम पाक हो तो इससे ज्यादा और क्या होवे। उनमें गुनाह नहीं है, बदनजरी नहीं है, झूठ नहीं है, फरेब नहीं है, दगा नहीं है। हो सकता है कि अभी वो लोग, वो बच्चे के जो वेस्टर्न कंट्रीज में आए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कभी उनको छेपी रोग लगा होवे, लेकिन दीनदारो वो हमसे बेटर इस्माइली है। उन लोगों के पास ये मंडलियां टोलियां नहीं है, उन लोगों के पास वो बहुत सी ऐसी बख्शिशें जो हमको हैं उनके पास नहीं है, और इसलिए जब वो जमात खाने में आते हैं तो उनको ऐसी नवाई लगती है कि हमारे जमात खानों में, काबुल के जमात खाने में, के तेहरान के जमात खाने के अंदर, के दीसबाद के जमात खाने के अंदर, के ताजिकिस्तान के जमात खाने में ऐसी बातें तो नहीं। बहिष्ट दिखता है ये चैंडेलियर, ये पंखे, ये कारपेट, ये रोशनी। वो लोग बेचारे गरीब, जमात खानों के अंदर चटाइयां भी नहीं है, धूड़ में बैठते हैं, बत्तियां नहीं है, चांद की रोशनी में बैठते हैं। उनके कपड़े ऐसे हैं कि एक कपड़ा पहन लिया, 8 दिन के बाद उसी को धो के सुखा लिया और वही पहन लिया, या कभी कभी गीला गीला ही पहन लिया। दूसरा कपड़ा है नहीं कि एक कपड़ा पहने और दूसरा हम धो ले रहे हैं। ऐसे गरीब हैं, पांव में जूतियां नहीं है, बहुत सी जात की बीमारियां भी हैं, क्योंकि हाइजीनिक इल्म नहीं है। और खुदा का जो लॉ है वो अमीर गरीब आलिम जाहिल सबको सरीखा है, तो उनकी भूलों की वजह से उनमें बहुत सी बीमारियां भी हैं। अब 1000 बरस की, 1000 साल इस एक किस्म की सेक्लूडेड जिंदगी के बाद वो लोग थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुए हैं, थोड़े थोड़े आते हैं। 1000 ईयर्स हुए, दे हैड नेवर सीन मौला बापा इन एनी जनरेशन। उस जमाने के अंदर फोटो नहीं थी। आज हम बहुत दफा लड़ते हैं इमाम की फोटो के लिए, जो कि फोटो हमारे मौला की है, हम उसको इज्जत की नजर से देखते हैं। फोटो के अंदर कुछ नूर नहीं है, ये तो एक याद ही है। मगर मैं ये पूछता हूँ, असन अली शाह माँ बाप से पहले तो फोटो नहीं थी, कैमरा का इन्वेंशन नहीं हुई थी, तो उस जमाने के अंदर क्या वो इमाम को नहीं पहचानते थे? अरे वो ऐसे आबिद थे, आंख बंद करके इमाम का दीदार करते थे। हमारी आंखें वीक हो गई, हमारी आंखों के अंदर धुंध आ गया, जिसको इंग्लिश के अंदर कैटरेक्ट कहते हैं, इसलिए हमको रोशनी भी नहीं दिखती। चीजें तो छोड़ दो, हमको माल दौलत ऐश आराम कंफर्ट मोटर बंगला दर दागिना मस्ती में पड़े हैं, हम शराबी बन चुके हैं। कौन सी शराब? मोह ममता माया मौज शौक की शराब ने हमारी अकल गुम कर दी है। मजहब को हमने सिर्फ एक छोटा सा रिचुअल समझ लिया है। हम जमात खाने आते हैं, कितने हैं हमारे अंदर कि जो रियली सिंसियर हैं ये जानने के लिए कि मेरे मजहब की हकीकत क्या है? जो कितने हैं जो ये जानते होंगे कि हमारे मजहब बातुनी के अंदर कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से हमको बातुनिया कहते हैं? कौन सी चीज है हमारे मजहब में, हमको बातुनी क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया दीनदारों कि हम जाहिर की इतनी कदर नहीं करते, हालांकि दुनिया में खुदा ने हमें भेजा है तो हम जाहिर में रहते हैं। हमको खाना चाहिए, पहनना चाहिए, सोना चाहिए, ये जाहिर की चीजें हैं, लेकिन असल चीज हमारी बातुन है, जो हमारी आत्मा के साथ, हमारे सोल के साथ कनेक्टेड है। हमारी जिंदगी का एम ये नहीं है कि हम करोड़पति बन जावे, हमारी जिंदगी का एम नहीं है कि हम बेहिसाब मिलकत खरीद के उसके भाड़े के ऊपर खाते रहे। हमारी जिंदगी का एम ये है कि मरने से पहले हम हजर इमाम के नूर को देख सकें। यह है बातुनी मजहब। दुनिया के किसी और मजहब के अंदर यह चीज नहीं है, हमारे मजहब के अंदर है कि मरने के बाद जो हमको करना है वो हम मरने से पहले करें तो हमको बहुत सेविंग होगी, बहुत सेविंग होगी। इसलिए सेविंग होगी कि इस दुनिया के लाइफ के अंदर अगर हमने 1 कलाक बंदगी की, तो मरने के बाद इसी बंदगी को करने के लिए हमको शायद 100 बरस की जरूरत पड़े। मरने के बाद सौ बरस में जो हमको अचीवमेंट होगी वो मरने से पहले एक घंटे में होगी, शायद दस मिनट में हो जाए। ऐसा क्यों भला? ये रेशो प्रोपोर्शन ऐसा काहे को खराब कि एक के बदले में इतना बहुत? इसलिए कि इधर दुख तकलीफ ग्रीड टेम्पटेशन ऐश आराम कंफर्ट, ये दुनिया की जो आकर्षण है ना, इसके अंदर तुम्हारा दिल चोट न गया, तुमने इन सब चीजों से अपना दिल निकाल के मौला के नूर के लिए रख दिया, तो मौला कहता है शाबाश शाबाश, ये सब चीजों ने तुम्हें खींचा नहीं, फिर भी तुमने जोर लगा के अपने दिल को निकाल के दुनिया की मोहब्बत छोड़ के तुमने मेरी मोहब्बत में एक घंटा निकाला, मैं तुमको वो बख्शिश देता हूँ कि मरने के बाद 500 बरस में नहीं मिलेगी, मैं वो बख्शिश तुम्हें देता हूँ। मौलाना राम का जो ससुरा था, फादर इन लॉ, मौलाना राम इसलिए कहता हूँ कि वो इमाम का नूर थे, उनका ससुरा था, उसका नाम था राजा जनक, हिंदू चीज नहीं है, हिस्ट्री है। आप जनक को कुछ और नाम दे दो, अब्बास कह दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक बादशाह भी थे, बहुत बड़े इबादत वाले भी थे। सुखदेव एक दूसरे राजा का लड़का था और वो राजा भी बड़ा आबिद था, अपने बेटे को जनक के पास भेजा कि जाके इबादत सीखो, और उसने एक चिट्ठी भी भेजी जनक को, दोस्ती थी मोहब्बत थी, अरज की कि मैं अपने बेटे को समझाऊं, उससे ये बेटर है कि आप उसको ट्रेंड करो इबादत में। सुखदेव राजा का बच्चा था, दोस्त का था, उसको बड़ी इज्जत से रखा अपने घर में। एक आध महीना निकल गया, थोड़ी 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 उसकी टेस्ट लेता रहे। एक दिन उसने हुक्म किया राजा जनक ने गांव के अंदर कि अभी एम्पायर डे आता है, खुशियां बनाओ। तो तीन चार दिन के अंदर उन्होंने तैयारियां की, सारा गांव सजाया गया, डेकोरेट किया गया, सब जगह राजा के हुक्म से खाने पीने का सामान रखा गया मुफ्त, कहीं गाना बजाना होता है, कहीं डांस हो रहे हैं, कहीं लोग खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ये तमाम सेलिब्रेशन इस जोर शोर से हुई। रात को 9 बजे जब ये तमाम सेलिब्रेशन खाना पीना गाना बाना टॉप के ऊपर था, सुखदेव को कहा बेटा मैं तुझे टेस्ट करना चाहता हूं। अच्छा महाराज, एक प्लेट ली कि जिसके दोनों किनारे ऐसे ऊंचे थे, ऐसे स्लॉटिंग नहीं थे, स्ट्रेट जैसे कि ये पड़े हुए हैं जिसमें हम ये कारसाजी रखते हैं, इस थाले के अंदर उसको बुला के कहा ऐसा हाथ करो, हाथ के ऊपर थाला रखा और जनक राजा ने बॉटल लेके इसमें तेल डाला, इतना तेल डाला इतना डाला इतना डाला कि किनारे तक लबालब भर गया, सारा थाला भर गया, और आखिर साइड में ऐसा हाथ फिराया कि तेल गिरा तो नहीं, मगर वो सब साइड उसकी सूखी थी। बेटा जाओ गांव की सैल करके आओ, मगर देखना ये तेल गिरे नहीं। अरे महाराज, दो हाथ इस तरह से हैं, उसके ऊपर तेल से भरा हुआ थाला है, और सुखदेव महल में से निकले, दो आदमी सोल्जर साथ दिए कि इसको कहीं धक्का न लगे या कोई छेड़े नहीं, आगे आगे दो आदमी सोल्जर, दो पीछे, सुखदेव महाराज बाहर निकले, चल रहा है, इधर से तबले सारंगी की आवाज आती है, लेकिन इसने ऐसा करके देखा नहीं, क्योंकि ऐसा करने जाएगा तो तेल गिर जाएगा, तो इधर लड़के खेल रहे हैं, उधर कोई औरत डांस कर रही है, इधर पकवान पक रहे हैं, नाक में खुशबू जा रही है, दिल कहता है थोड़े से पकौड़े खा लो, लेकिन यूं करते करते ये तमाम किस्म की सेलिब्रेशन ढींगा मस्ती, तब इसको कुछ पता नहीं, इसकी तमाम 100% कॉन्सेंट्रेशन इस पे थी कि ये तेल का बैलेंस खराब ना होए, नहीं तो मुझे शर्म आएगी, गुरु कहेगा ओहो ऐसा हाथ फिरा के देखेगा तो तेल तो गिर गया। फिरते 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 आधी रात को घर वापस आया, राजा जनक उठे, आजू बाजू में हाथ फिराया तो हाथ सूखे थे। बेटा तुम पास हो गए, तुम पास हो गए, तुमने क्या देखा? तो महाराज मैंने तेल देखा और कुछ नहीं देखा। ये है हमारा मकसद। अगर हम ये दुनिया के गाने बजाने वगैरह से अपना दिल हटा के हम अपने तेल को देखें, तेल का मतलब क्या है? हमारी जो लाइफ है ये तेल है, ये गिर ना जावे, ये लाइफ हमारी बिगड़ ना जावे। जब हम ये हालत पे आते हैं तो मैंने आपको अर्ज की ना कि एक घंटे की बंदगी ये जिंदगी में मौत के बाद की 500 बरस की बंदगी के बराबर है, शायद इससे भी ज्यादा। तो हमारे इस्माइली बातूनी तरीके के अंदर ये बात है कि हम मरने से पहले एक दफा एटलीस्ट वंस, और ये रहम करने वाला बख्शिश देने वाला धनी कैसा है, मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से ये लफ्ज कभी नहीं सुने कि हम दुआ करते हैं कि तुमको मरने से पहले कम अज कम एक दफा नूर का दर्शन होए, सुल्तान मोहम्मद शाह के मुंह से कभी नहीं सुना। सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते थे, मुझको मेरे साथ माता सलामत हम बैठे थे और मरहूम मुखी नैरोबी के रेमू मुखी थे, रेमू सुलेमान वीर जी, माता के पास बैठे थे और माता हमको बातें सुनाती थी। ये जब सुल्तान मोहम्मद शाह की दफन क्रिया हुई उसकी बात है, अजर इमाम की हमने बयत कर ली थी। माता कहती थी कि मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह कहते थे या कि करीम जब इमाम बनेगा तो मैंने जितना लाड लडाया है इससे वो बहुत ज्यादा जमात को लाड लडाएगा, या कि करीम जब इमाम बनेगा तो वो जमात को इतना आबाद करेगा, इतना आबाद करेगा कि तुम उसका ख्याल भी नहीं कर सकती। अभी 25 बरस और ठहरो, 25 तो नहीं बाकी शायद 20 बरस रहे हज़रत इमाम की गोल्डन जुबिली को, उस वक्त हम देखें क्या बनेंगे। हमारी चढ़ती हो रही है, हो रही है, हो रही है, हमारी स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखना यह है कि इस हाई स्पीड के अंदर रास्ता क्लीन साफ रहे, ऐसा ना हो कि खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि मोस्टली एक्सीडेंट हाई स्पीड से होते हैं। और हमारी हाई स्पीड यह है कि हम जल्दी से पैसे वाले बन रहे हैं, हमारी हाई स्पीड ये है कि हम जल्दी से ज्यादा अपने लाइफ को कम्फर्टेबल बनाना चाहते हैं। ये कम्फर्टेबल बनाने के लिए हमको 420 भी करनी पड़ती है। हम दुनिया में मस्त हो रहे हैं, हम दुनिया की बहुत सी चीजों में जा रहे हैं, मजहब की चीजों को भूल रहे हैं। दीनदारों हमारे अंदर शराबी बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जुगाड़ खेलने वाले बढ़ रहे हैं। शर्म की बात तो यह है कि औरतें भी जुगाड़ खेलती हैं। मैं कनाडा के बहुत बड़े बड़े गांव की बात करता हूँ, सिर्फ आप ही को नहीं कहता, लेकिन टोरंटो में भी है, वैंकूवर में भी है और जगह भी है, हमारी औरतें भी जुगाड़ खेलती हैं। हमारी कुछ भाइयां यंगस्टर ऐसी हैं कि वो सिगरेट भी पीती हैं। हमारी जमात के अंदर ऐसे भी हैं कि जो शादी किए बगैर कॉमन मैरिज के तौर पे वो लोगों ने एक औरत को रखा हुआ है और दोनों इस्माइली हैं, बच्चा भी हुआता है। ऐसे बच्चे को इस्माइली मजहब में बयत में लेना भी नहीं चाहिए, हालांकि ऐसा बनाव बन गया है। शादी किए बगैर वाइफ हस्बैंड दोनों इस्माइली, कॉमन लॉ मैरिज के तौर पे बच्चा हुआ और जमात में लेके आए और मुखी ने भूल करके उसकी बयत करा ली, हमारे मजहब में ये चीज जायज नहीं है, हमारे मजहब में ये जायज नहीं है। हम क्रिश्चियन नहीं है, हम इस्माइली हैं। इस्लाम हमारा दीन है, इमाम कहता है कि तुम इस्लाम के उसूलों के ऊपर चलो। हमारा उसूल, हमारा मजहब, हमारे आयात, हमारी जिंदगी, हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी जिंदगी का एम जो है तो वो इस्लाम, और वो भी प्योरली बातूनी इस्माइली तरीके के ऊपर है। हमारा मजहब नूर का मजहब है, हम नूर के रास्ते के ऊपर चलने वाले हैं। और वो बदियां बुराइयां के जो उन लोगों के अंदर होती हैं कि जो बेदीन हैं, ये क्रिश्चियन लोग सिर्फ नाम के क्रिश्चियन हैं, इनके पास दीन नहीं है।
क्रिसमस आता है तो महज कमर्शियल गिमिक के तौर पे वो लोग मानते हैं, उनके अंदर कोई रूहानियत नहीं है। अगर ईस्टर आता है तो ईसा को याद करने वाले थोड़े से चर्च के पादरी हैं, बाकी तो सब हॉलीडेज वगैरह के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसी बहुत सी चीजें बेच लेते हैं, वो शराब पीते हैं। उनके अंदर तमाम दुनिया की बदियां बुराइयां हैं। मौलाना हजर इमाम ने हमको कनाडा इसलिए नहीं भेजा कि तुम क्रिश्चियनों की तरह बेदीन बन जाओ या क्रिश्चियनों की तरह बदमाश बन जाओ। इन लोगों के अंदर अच्छे लोग भी हैं, इन लोगों के अंदर इबादत वाले लोग भी हैं, इन लोगों के अंदर सखावत वाले लोग भी हैं। हमको वो लोग के जो इनके अंदर इबादत वाले लोग हैं, इनके अंदर जो अच्छे लोग हैं, इनके अंदर जो नेक आदमी हैं, उनकी कुछ बातें अगर हम अख्तियार करें तो कोई बात भी हुई, लेकिन इन तमाम रफियंस के लिए, इन लोगों की सोसाइटी के असर यह पड़ा है कि 22 बरस का एक लड़का बंदूक हाथ में लेता है और मॉन्ट्रियल के कॉलेज में जाके 14 लड़कियां मार देता है। मजहब नहीं कहता ऐसा, इनकी सोसाइटी खराब हो गई है, हमको इस सोसाइटी में से कुछ नहीं लेना। हम जब वाड़ी में जाते हैं दीनदारों तो वाड़ी के अंदर कांटे बांटे भी लगते हैं, लेकिन हमारा एम ये होता है कि हम फ्रूट लेवें या फल लेवें, तो फ्रूट और फल लेते वक्त हमको कांटा भी लगता है। इस मुल्क के अंदर आके कुछ बदियां बुराइयां हैं, मगर हमको वो नहीं लेनी चाहिए। हजर इमाम फरमाया, तुम अपने बाप दादा की प्रणालिका के ऊपर अमल करो, तुम सच्ची इस्लामिक स्पिरिट के साथ रहो। हमारा कैरेक्टर, हमारे अमाल, हमारे विचार, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारी थिंकिंग should be and must be compatible to our faith, and the faith is batuni nurani faith. हमारे अंदर वो बदियां नहीं होनी चाहिए। जब ये हमारे भाई ये ईरानी अफगानिस्तानी इधर आएंगे, हजारों की तादाद में आएंगे, इस वक्त सारे कनाडा में तकरीबन 150-200 आदमी हैं, मगर हजारों आएंगे, इधर भी आएंगे, अफ्रीका में भी थोड़े रहेंगे, थोड़े पाकिस्तान में भी रहेंगे, थोड़े यूरोप भी चले जाएंगे, हमारे पास भी आएंगे। दीनदारों, आपको ख्याल नहीं कि आज से 50 बरस पहले जो हालत नहीं थी हम कभी सोच भी नहीं सकते, 50 तो बहुत दूर की बात है, आज से 25 बरस पहले भी हम लोगों को कनाडा के स्पेलिंग नहीं आते थे। इमाम ने हमको कनाडा में बसाया है, इमाम ने बसाया है, और जब और 25-50 बरस निकल जाएंगे उस वक्त की आप इमेजिनेशन कर सकोगे? अगर आपका दिल नूर से भरा है तो वल्ला बिल्ला आपके लिए इजी है ये जानना कि 2050 के अंदर हम इस्माइलियों की हालत कनाडा में क्या होगी। नॉट डिफिकल्ट, आप देख सकते हैं। और हज़रत इमाम ने हमको इशारा भी किया है कि 25 बरस के बाद क्या होगा उसका तुम ख्याल करो, विचार करो, उसकी प्लानिंग करो, सोचो उसके लिए। हमने तो फरमान सुना सुन लिया, लेकिन कभी सीरियस भी उसके ऊपर स्टडी नहीं की। हमारी जमात के अंदर ये बदियां बुराइयां अच्छी नहीं है हमारे लिए। जब हमारे ये भाई आएंगे उन भाइयों की मदद करो। कुछ लोग आए, हमारे लोगों ने उनको कपड़े दे दिए, थोड़े पैसे दे दिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, आप उनके साथ बैठो, उनसे प्यार करो, मिलो गिलो, आया जाया करो, उनको ऐसा फील नहीं होवे कि मैं अफगानिस्तान छोड़ के मैं इधर कनाडा में आया तो मुझे पूछने वाला कोई नहीं। उनको हम घेर ले रहे, अपने अंदर मिक्स कर ले रहे, वो हमारे ही मौला की वाड़ी के दूसरे किस्म के फूल और फल हैं। ऐसा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह कि हम उनकी लड़कियों से शादियां भी करेंगे और उनके लड़के हमारी खोजी लड़कियों से भी शादियां करेंगे। अरे इधर के वो क्रिश्चियन काफरों के साथ शादी करना, उससे तो ये अच्छे ना, हमारे मोमन भाई हैं, ब्याह शादियां भी होंगी, हम उसे मिक्स हो जाएंगे, वो हमारी भाषा नहीं समझते तो आहिस्ता आहिस्ता इधर इंग्लिश सीख जाएंगे, वो हमारे ज्ञान नहीं समझते तो कभी यारी दोस्ती से बैठ के उसको बोलो, देखो ये 20 सदर दिन ने ज्ञान लिखा है, आनंद आनंद करो, रिखी सरो, उसका मतलब ये है कि तुमको हजर इमाम मिला है, वलशाह तुम्हें पाया तो तुम बहुत खुशी रहो, तो वो कितना खुश होगा, सचमुच हजर इमाम हमको मिला है, हम बहुत खुश नसीब हैं। और ये भी होगा कि वो किसी दिन मुखी को आके कहे या मुखी किसी को कह देवे, आओ इधर आके तुम कसीदा पढ़ो, तो वो अपनी फारसी जबान के अंदर अली और नबी की शान के अंदर पोएम बोलेगा, वो कसीदा है। कसीदे का मतलब इन प्रेज ऑफ अल्लाह, ان پریز آف رسول، ان پریز آف علی، اس کو قصیدہ کہتے ہیں. جیسے کہ ہماری گنانوں میں بہت سے قصیدے ہیں، خالی اس کے اندر اس کی تعریف ہے. جیسے کہ پیر شمس نے یہ لکھا کہ حق تو پاک تو بادشاہ مہربان بھی علی تو ہی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو ہی تو. یہ پانچ پانچ کا گنان قصیدہ ہے، ہندی زبان کا قصیدہ ہے، وہ فارسی زبان کے قصیدے ہیں. فرق اتنا ضرور ہے کہ گنان پیروں کے یا پیروں کی اولاد کے کٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان دائیوں کے ہیں کہ جو پیروں کی اولاد میں نہیں تھے. مگر کوئی بات نہیں، حضرت امام نے، امام سلطان محمد شاہ نے ان تمام لوگوں کو رضا دی تھی کہ تم اپنے اپنے جماعت خانوں کے اندر قصیدے پڑھو. ان قصیدوں کے اندر علی نبی کے پیار کی باتیں ہیں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ٹائپ کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جب ادھر آئیں گے، ہم ان کو افکار دے رہے ہیں، ہم اس کو بدھا لے رہے ہیں، ہم اس کو اپنے اندر مکس کر ڈالیں تاکہ یہ مولا کی واڑی بڑھتی رہے. کینیڈا بہت جلدی، کینیڈا اور امریکہ آج لگ بھگ 60-65 ہزار اسماعیلی ہیں، بائی 2000 انشاءاللہ 100,000 اسماعیلی نارتھ امریکہ میں ہو جائیں گے. 2050 میں، 2050 میں تو نہیں ہوں گا، مگر 2.5-3 لاکھ اسماعیلی شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ. ادھر کی جماعت بہت بڑھے گی. کینیڈا ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا سینٹر بنے گا، کینیڈا ساری دنیا کے ہیڈ کوارٹر کے طور پہ کام کرے گا. اور انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا دینداروں کہ اس جامعہ کا مالک یا دوسرے جامعہ کا مالک، لیکن امامت ادھر کینیڈا میں آئے گی. آج اگلیمو میں ہے نا، یورپ میں، اس کے پہلے ہندوستان میں تھی، اس کے پہلے ایران میں تھی، ایران سے پہلے ایجپٹ میں تھی، ایجپٹ سے پہلے عراق میں تھی، عراق سے پہلے عربستان میں تھی. ہماری امامت کا ہیڈ آفس بھی بدلتا رہا ہے، وہ وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ خود امام کا ریٹھان اگلیمو سارا اٹھا کے ادھر لے کے آئے گا. یہاں کہاں لائے گا، اس کی خوشی کی بات ہے، لیکن کینیڈا میں امامت آ کے رہے گی. کینیڈا ساری دنیا کے اسماعیلیوں کا گائیڈ بنے گا. کینیڈا میں سے اسماعیلی مذہب سکھانے کے لیے دائی اور پیس کور کی طرح لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں گے. ارے کیا باتیں کروں، میں تو فلم دیکھ رہا ہوں، آپ کو کمنٹری سنا رہا ہوں، معلوم نہیں آپ دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے. دیندارو اپنے مذہب کو بہت سمجھو، مومنو سوچو، اپنے امام کی باتوں کو سوچو، اس کے فرمان پڑھو، اور ان فرمانوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ڈھونڈو کہ امام نے بہت کچھ کہہ دیا ہے ہم کو. مولا سے پیار کرو، مولا کے چاہنے والوں کو پیار کرو، بھائی بہنوں کو پیار کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو. ہم کو یہ بدیاں برائیاں نہیں چاہیے. وائف ہسبینڈ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی ملکت چھیننے کے لیے کورٹوں میں کیس ہو رہے ہیں، دونوں اسماعیلی ہیں. ارے تم کورٹ میں کہہ کے جاتے ہو، آؤ نا. ہماری جماعت کے اندر ایسے بورڈ بہت سے ہیں، ایسے مکھی کمیٹیاں ہیں، کاؤنسلیں ہیں، جھگڑا ہے تو ادھر آ جاؤ. پہلے تو جھگڑتا ہی کائے کو، اسماعیلی کو جھگڑنا کیوں؟ ہم کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، وائف ہسبینڈ کو بھی نہیں، بھائی بہنوں کو بھی نہیں، باپ بیٹوں کو بھی نہیں. باپوں کو بلا کے توڑ چھاڑ دیا ہے، باپ کا کوئی خیال نہیں کرتا، ماں کا کوئی خیال نہیں کرتا، بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. گریڈ اور دنیا کی موہ ممتا ٹیمپٹیشن نے ہم کو خراب کر دیا ہے. ہمارے اندر ایسی بہت سی قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو یہ وائٹ کینیڈینز کے اندر ہیں. ہم کو وہ چیزیں نہیں چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم وہ بیہیویئر نہیں کر سکتے. اچھے بنو، سافٹ بنو، کائنڈ بنو، مرسیفل بنو، ہیلپ فل بنو، کوآپریٹو بنو، ٹالرنٹ بنو، پیشنٹ بنو، اچھے بنو، مذہبی بنو، ایک دوسرے سے پیار رکھو. کبھی کسی نے کچھ کہہ بھی دیا ہے، اچھا ٹالریٹ کر لو، صبر کر لو، हमारे अंदर अच्छाइयां पैदा होनी चाहिए जो हमारी लाइफ को भी खुशगवार बना देवे, अच्छा पीसफुल बना देवे। और अगर हम पीसफुल हैं तो हमारी वाड़ी आड़ी जो हमारी औलाद है वो भी पीसफुल रहेगी, जमात के अंदर पीस वाले ज्यादा आ जाएंगे वो भी अच्छा हो जाएगा, हमको नर्वस बीमारियां नहीं होंगी, हार्ट ट्रबल नहीं होंगी, हमको आर्थराइटिस नहीं होएगा, हमको इंशाल्लाह कैंसर नहीं होएगा। एड्स की बीमारी जो है यह खुदा की पनिशमेंट है, और ये एड्स की बीमारी उन लोगों के अंदर है कि जो क्रिमिनल हैं, होमोसेक्स करते हैं, उन लोगों के अंदर। आज मैं आपको खुली खुली इसलिए बातें बताता हूँ कि गोल गोल बातों से कभी आप नहीं भी समझते होंगे, दीनदार और लूत नबी की जो उम्मत थी उसके अंदर ये बदमाशी ये सड़ा था कि होमोसेक्स सेक्सुअल्स थे, ये चीज हमारे मजहब में हराम है, सेक्स आउटसाइड मैरिज हराम है, शादी के बगैर यारी दोस्ती औरत मर्द की औरत मर्द के तरीके पे हराम है, शराब पीना मना है हराम है, जुगाड़ खेलना मना है, दुकर का गोश्त खाना मना है। हमारे मजहब ने जो रूल्स बना रखे हैं हमको उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए तो हमारे दिल के अंदर नूर की रोशनी पैदा होवे। मौलाना हजर इमाम दिनों दुनिया में आपको सुखी आबाद करे, दुनिया भर की बदियों बुराइयों को दफा दूर करे, मुश्किलें मुसीबतें बलाएं दफा करे, मौला हकीकत की समझ देवे, मौला आपके दिलों को नूर से भर देवे। मौलाना हजर इमाम आपको दीन में दुनिया के अंदर अपने छत्र छाया में रखे, मौला आपकी जान माल में आल औलाद में रोजी कमानी में तंदुरुस्ती में इबादत में बंदगी में ईमान में बरकत देवे। दुनिया भर की जमात हर एक जमात के लिए इज्तिमाई और इनफरादी यानी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ये सब दुआएं उनके लिए मौला कबूल करे, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, मौला फरमान बरदार मोमन बनाए, दसवन सुकरीत में पूरा रखे, आपस में सलाह सम मोहब्बत प्यार देवे। मौला ना हजर इमाम जहर बातुन दीदार नसीब करे। ए तुझ बिना कोई Sorry.